सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
जीत गए कोरोना से, कोरोना की जंग से जीते हुए लोगों से एक सकारात्मक बातचीत। प्रस्तुति सुमेधा अग्रश्री।
नमस्कार मित्रों, आज हम फिर हाजिर हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि हम ये सीरीज इसलिए शुरू कर रहे हैं कि एक जो डर का माहौल बना हुआ है कोरोना से, डर अपनी जगह ठीक है, लेकिन उस डर के चक्कर में उस डर को इतना नहीं हावी हो जाना है हमारे भीतर कि हम जो बहुत छोटी सी प्रिकॉशन है, बहुत छोटी सी सावधानियां हैं, वो भी छोड़ दें। तो हम इस सीरीज में अपने कुछ उन मित्रों से मिल रहे हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है, जो एक समय में कोरोना से ग्रसित हुए थे लेकिन उससे बहुत सफलतापूर्वक बाहर आ चुके हैं और अब एक स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं और दूसरों की मदद के लिए तैयार हैं। तो ये इस सीरीज की कोशिश है कि एक थोड़ी सी सकारात्मकता फैले हम सबके बीच में। आज हमारे साथ है रवि सिंह जी, जो रायपुर से हैं। रवि जी, स्वागत आपका।
थैंक यू सुमेधा जी।
तो पहला सवाल तो यही कि सबके मन में एक डर रहता है ना कि मुझे ना हो जाए। आदमी अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मैं बचा रहूं, लेकिन फिर भी ये ऐसा वायरस है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि पता नहीं कब, कहां, कैसे, किससे लग जाए। तो जब आपको पहली बार जब पहली दफा ये एहसास हुआ कि शायद कोरोना के सिम्टम्स हैं, तो क्या आपके अंदर कोई सिम्टम्स थे? फिर आपने पहला कदम क्या उठाया? क्या आपने तुरंत टेस्ट करवाया या रुके, क्या किया आपने?
मुझे जिस मैं टेस्ट कराया उसे एक दिन पहले मुझे बुखार आया था हल्का सा, तो मैंने सोचा करा लिया जाए, पता नहीं अचानक से विचार आया करा लिया जाए। तो उस दिन मैं डॉक्टर शिशिर साहू जी से मिला था कि भैया वैक्सीनेशन कब से हो रहा है, तो बोले आपकी एज 45 नहीं हुई है, आपका वैक्सीनेशन नहीं होगा, एक अप्रैल के बाद आप पता कीजिए। तो फिर मैंने बोला अभी क्या कर सकते हैं, फीवर आ रहा है, तो बोलते हैं ठीक है जाके मलेरिया टेस्ट करा लो या कुछ भी करा लो। तो मैंने मलेरिया टेस्ट नहीं कराया, मैंने कोविड का टेस्ट कराया, आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया मैंने, और उसका रिजल्ट रात को 12 बजे मिल गया। ये बात थी 25 मार्च की।
आपने पहला कदम क्या उठाया? क्या आप आइसोलेट हो गए या आप हॉस्पिटल की तरफ दौड़े?
नहीं, पहले जिस दिन मुझे बुखार आया था उसके नेक्स्ट डे मैंने अपना टेस्ट करवाया था।
जब आपको टेस्ट पॉजिटिव आ गया, आपको कंफर्म हो गया कि हाँ कोरोना पॉजिटिव है, तब आपने क्या किया? क्या आपको, आपने खुद को आइसोलेट किया या आप तुरंत किसी हॉस्पिटल की तरफ भाग पड़े?
जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तो मैं घर में अकेला था, मेरी वाइफ और बच्चे मतलब मेरे नेटिव प्लेस गए हुए थे, वो अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो मैं घर में एक तरह से आइसोलेट ही था। तो मैंने जो मेरे करीबी हैं, जो उन लोगों से मैंने सलाह लिया, एक्चुअली मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस था बट मैं तभी उनसे पूछा फोन करके कि मेरे पास में हेल्थ इंश्योरेंस है जिसकी कैपेसिटी 10 लाख रुपए है, तो क्या मुझे एडमिट होना चाहिए या घर में रहना चाहिए? उन्होंने बोला तू तेरे पास कैपेसिटी है तो एडमिट हो सकता है, बट हम सजेस्ट करेंगे कि हॉस्पिटल मत जाओ, है ना, घर में ट्रीटमेंट कर ले, जो दवाइयां वहां देंगे वो ही तू दवाइयां लाके डॉक्टर से, जो गवर्नमेंट क्योंकि तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो तुम्हें गवर्नमेंट अभी एक डॉक्टर अपॉइंट करके देगी तुम्हारे लिए, उनसे तुम गाइड करके अपनी दवाइयां ले लो, घर में ठीक हो जाओगे। हॉस्पिटल में अननेसेसरी, क्योंकि वहां पे एक टेस्ट के अलावा और कोई टेस्ट नहीं होता, तो ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन, तो ओवरलोड हो जाता है इंसान बेसिकली। दूसरा, क्योंकि आप किसी से मिल नहीं सकते तो आप फील गुड नहीं करेंगे,
नहीं करते
मतलब आप पॉजिटिव वे में सोच नहीं पाएंगे आगे, है ना, वहां क्योंकि बेसिकली पहले जो बीमारियां होती थी लोग मिलने आते थे तो आदमी को अच्छा लगता था कि हाँ मैं 2 चंद में ठीक होकर निकल जाऊंगा, बट यहाँ पे वो माहौल हो जाता है कि आप मिलते नहीं है किसी से मिल नहीं पाते हैं, तो आप कितना सोचेंगे अपने बारे में ही। तो मुझे जो लगता है,
आपने घर में ही अपना ट्रीटमेंट किया, क्या पूरा ट्रीटमेंट आपका घर में ही चला और आप घर में ही स्वस्थ हो गए या आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी?
नो मैम, मुझको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने अपने घर में जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो दवाइयां दी गई थी उसको मैंने उसके साथ प्रिस्क्रिप्शन भी दिया गया था, तो वो मैंने उसको रेगुलर वे में फॉलो किया, भाप लेते रहा तो मैं ठीक हो गया।
आपको कोई बड़ी तकलीफ थी? क्या तकलीफ थी आपको रवि जी?
नहीं मैम, कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मैंने ज्यादा लेट नहीं किया ना, मुझे एक हल्का सा फीवर आया, नेक्स्ट डे से मैंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया, तो मुझे मेरे कोई भी काम हैम्पर नहीं हुए और ना कोई तकलीफ हुई।
यानी ये एक बात निकल कर आती है, ये हम बाकी सबको भी कह सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा सिम्टम आता है आप सावधानी पूर्वक टेस्ट कराइए, और अगर पॉजिटिव है तो घबराए बिना हॉस्पिटल की तरफ मत भागिए, सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, उसका लाभ लीजिए और घर में ही आप ठीक हो सकते हैं, राइट?
एग्जैक्टली मैम, क्योंकि अगर जैसे एक्चुअली क्या है, कई लोग लेट कर देते हैं तब तक के वो वायरस बढ़ जाते हैं, अगर हम टाइम पे लेके टाइम पे दवाइयां शुरू कर देंगे तो वो अंडर कंट्रोल आ जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी हैं तो उन लोग पहले उन्होंने समझा कि वायरल है तो उन्होंने टेस्ट नहीं कराया, चार दिन बाद टेस्ट कराया, और चूंकि अभी माहौल ज्यादा हो गया है तो रिपोर्ट आने में चार दिन लग गया, तो मतलब जो वायरस पहले दिन जीरो था वो आठवें दिन कहां पहुंच गया पता नहीं।
तो अब दूसरी चीज रवि जी कि ये आपके केस में एक सबसे अच्छी बात हुई थी कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो सिर्फ इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि आप सतर्क थे, आपने शुरुआती दौर में ही वो प्रिकॉशन लिया और दवाइयां ली, ये एक बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई इसके लिए। अब दूसरी बात ये, जैसा आपने शुरू में कहा था कि खुद को थोड़ा सा फील गुड करना पड़ता है, अपना मनोबल थोड़ा ऊंचा रखना पड़ता है, तो आप घर पे अकेले थे, अपने लिए खुद को थोड़ा सा मेंटली पॉजिटिव बनाए रखने के लिए क्या करते थे, और आपके पड़ोसियों का, दोस्तों का क्या रोल था?
देखिए मेरे जो पड़ोसी जी हैं चंद्राकर अंकल, उनके यहाँ से मुझे तीनों टाइम का खाना आ रहा था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उनके जो लड़के हैं वो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने मुझे पूरा हफ्ते भर खाना प्रोवाइड किया तीनों टाइम, बहुत अच्छी बात है, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और दूसरा एक्चुअली मैं बिजनेसमैन हूं तो मैंने अपना फोकस कोरोना की तरफ किया ही नहीं, मैंने मेरा फोकस ये था कि क्योंकि चिंता उस बात की करनी चाहिए जिसका कुछ कर सकते हो, जिसकी कुछ कर ही नहीं सकते उसका चिंता करके क्या करोगे, तो मैंने अपना फोकस जो अपने बिजनेस डेवलपमेंट पे ही किया कि हाँ मेरा जो बिजनेस है ना, मेरा भी बिजनेस नहीं कि इंडिया में 8-10 स्टेट में चल रहा है, उसके अलावा फॉरेन में 3 कंट्री में चल रहा है, तो मैंने अपना सारा फोकस उन्हीं के साथ बातचीत करने में उसी में टाइम वेस्ट किया, क्योंकि आपका 24 घंटा है, अगर आप 8 घंटा भी सोते हो आपका 16 घंटा है, कितना मनोबल बढ़ाओगे, इससे अच्छा बिजी रखने अपने आप को, तो बिजी रखा, कुछ पॉजिटिव मूवीज वगैरह थी जैसे गोल्ड मूवी देखी मैंने, मेड इन चाइना मूवी देखी, उसके अलावा कुछ सीरीज देखी, तो उस तरह से मैंने ताकि अपना नॉलेज बढ़े, ये मतलब एक टाइम मिला कि जहाँ हम फ्री होके अपने नॉलेज पे भी काम कर सकते हैं,
अपने आप को बूस्ट करने के लिए। सबसे अच्छी बात आपने ये की कि उस चीज की चिंता छोड़ दी जो अपने हाथ में नहीं है।
एग्जैक्टली, क्योंकि क्या करोगे चिंता करके।
तो रवि जी अब इस कंडीशन में क्योंकि आप उस फेज से निकल कर आ चुके हैं और आप हेल्दी वे में सोच सकते हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो अभी भी इससे बचे हुए हैं और चाहते हैं कि हम बचे रहें, तो उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और यदि मान लीजिए गाहे बगाहे आप कोई असावधानी हो भी जाती है या ये वायरस अटैक कर ही जाता है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए सबसे पहले?
देखिए मैम, कल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा भी काफी एडवाइजरी जारी की गई है, यानी कि जो लोग पर कोविड के लक्षण है उसके लिए उन्होंने बताया है क्या क्या दवाइयां लेनी है, तो एहतियातन वो दवाइयां लाके घर में रखें, है ना, और उसके अलावा भाप और योगा वगैरह करते रहें थोड़ा बहुत भी कम से कम, और साथ में जो यानी कि अभी टाइम मिला है, बेसिकली अगर हम प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज को देखें तो उनको टाइम नहीं होता है फैमिली के लिए, तो वो थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं फैमिली को, उसके अलावा अपने आप को बिल्डअप करें, क्योंकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर से हैं दोबारा कोविड आया है, दोबारा रिसेशन आएगा, ठीक है, तो जरूरी है कि अपने आप को बिल्डअप करें, अपना नॉलेज बढ़ाएं, अपने नॉलेज पे काम करें, उस पर वर्कआउट करें, क्योंकि कोरोना पे वर्कआउट करने से कुछ नहीं होने वाला कि ये मर गया वो मर गया इसकी नीड उसको दे दो उसको दे दो, कुछ नहीं, इससे अच्छा हाँ ये भी कर सकते हैं कि अपने जो भी खास दोस्त या मित्र हैं उनको फोन करें, बात करें क्या चल रहा है, अगर वो किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का जुगाड़ करके दे सकते हैं, किसी का दवाई का पता करके दे सकते हैं, किसी हॉस्पिटल का पता करके दे सकते हैं, तो एटलीस्ट वो सब चीजें करनी चाहिए।
बिल्कुल, अगर आप उस फेज से बाहर निकला है और दूसरों की मदद के लिए तैयार है तो बिल्कुल वो मदद करनी चाहिए, जैसे आपने अपने केस में बताया कि आपके पड़ोसियों ने आपके लिए खाना अवेलेबल कराया, तो ये पड़ोसियों की भी ड्यूटी बनती है कि छुपाना नहीं है और उस बंदे से दूरी बना के रखनी है जरूर, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ देना है।
Exactly, मैम
जी, अब हम ये पूछेंगे रवि जी, क्योंकि अभी ये चल रहा है कि जो भी कोरोना के पेशेंट है जो बहुत सीरियस हो गए हैं उनको प्लाज्मा थेरेपी काम करती है, और जो लोग कोरोना से पार आ चुके हैं उनका प्लाज्मा काम करता है, तो क्या आप उस स्थिति में हैं कि कभी जरूरत पड़ी तो आप अपना प्लाज्मा दे पाएंगे?
मैम जो शायद उसके लिए कोई टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट, वो शायद करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी शुगर पेशेंट हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरा लगेगा कि नहीं लगेगा।
अच्छा, शुगर पेशेंट होते हुए भी आपने कोरोना को मात दी, तो ये तो एक और बहुत अच्छी बात है कि उनको भी डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको कोरोना हो ही गया तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका आखिरी दिन है, आप बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते।
आज भी लगभग करीब आई इंडिया का जो रिपोर्ट है वो 2.25 लाख लोग ठीक हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग हो जा रहा है। अब देखिए कुछ कंडीशन ऐसी है, मैं सरकार पे उंगली तो नहीं उठाना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, बट किसी को पता नहीं था कि ये 15 दिन में स्ट्रेन चेंज होंगे, क्योंकि पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था। 15 दिन में काफी वो चीजें चेंज हो गई हैं, स्टाफ की कमी है, स्टाफ भी डर रहा है कि मैं ड्यूटी करना, क्योंकि सबके घर में मदर फादर हैं जो मना कर रहे हैं कि बेटा क्या जरूरत है 15,000 की नौकरी करने के लिए जान खतरे में डालना। तो उसकी वजह से स्टाफ भी डर रहा है, क्योंकि कई स्टाफ की डेथ भी हुई है, तो डॉक्टर स्टाफ की समस्या भी है हॉस्पिटल में, तो आदमी खुद भी निगरानी करे। अब मतलब वो मैंने देखा है कभी, जब जैसे ही लॉकडाउन होने से पहले मतलब जो न्यूज थी कि सदर बाजार में इतनी भीड़ थी, भाई ठीक है सदर बाजार जाओगे आपको 10% 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन कोरोना लेके आओगे तो क्या मतलब होगा, है ना। तो इससे अच्छा है कि जो आपके लोकल के लोग हैं जिनसे आप जहाँ पे आप जा रहे हैं दुकान खाली है, आराम से खरीदी कीजिए, 10% महंगा ही पड़ेगा ना, और क्या होगा। तो डिस्टेंसिंग बताना जरूरी है, लोग सस्ते के चक्कर में ऐसी भीड़ भाड़ जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनके लिए खतरा बढ़ गया है।
मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि हर जगह सरकार जाकर निगरानी नहीं कर सकती, आपको खुद को निगरानी में, खुद की निगरानी में खुद को रखना पड़ेगा।
एग्जैक्टली मैम, मतलब मोदी जी और भूपेश बघेल जी क्या कर सकते हैं अकेले के लिए।
आपने जिन डॉक्टर्स से सलाह ली या जिन दवाइयों को आपने लिया, जिनकी सलाह पर लिया, क्या आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे बाकी मित्रों के साथ, उनका नाम या उन हॉस्पिटल्स की चर्चा, या आपके पास कोई ऐसी जानकारी कि आपके आसपास कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें केयर होती है, या ऐसी कोई जगह है जहां पर सिलेंडर अवेलेबल होते हों, या कोई डोनर, जो भी जानकारी आप देना चाहें दे सकते हो, प्लीज दे दें।
मुझे तो जो दवाइयां मिली थी मैं उसकी स्लिप है मेरे पास में, मैं उसको अटैच कर सकता हूं अगर यहां पे शेयरिंग करने का ऑप्शन दिया जा रहा है।
जी, कुछ एक हॉस्पिटल्स की लिस्ट हमारे पास भी आई, क्योंकि अभी हम रायपुर के मित्र से बात कर रहे हैं, तो रायपुर के कुछ केयर सेंटर्स की लिस्ट आई है हमारे पास, हम वो भी अपने मित्रों के साथ शेयर करते हैं, बाद में हम इसको कमेंट्स में लिख देंगे। जैसे ये कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स, सरकारी केयर सेंटर की लिस्ट है, इसमें रायपुर के आसपास है इंडोर स्टेडियम, वर्किंग वुमेन हॉस्टल फुंडहर धरसीमा और तिल्दा मुख्यालय में, इसके अलावा साइंस कॉलेज अटारी, काइट कॉलेज धरसीवा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोबरा नवापारा, कम्युनिटी हॉल आरंग, सेवा भारती सरस्वती शिशु मंदिर सेक्टर 2 देवेंद्र नगर, डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल WRS कॉलोनी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरोरा तिल्दा। इसके अलावा अभी रिसेंटली विधानसभा सचिवालय में भी एक केयर सेंटर शुरू किया गया है, उसका फोन नंबर भी है और एक मेल आईडी भी है, हम कमेंट में लिख देंगे, अगर हमारे किसी भी मित्र को जरूरत हो तो वो वहां संपर्क कर सकता है। और कोशिश करेंगे हम कि जिन भी मित्रों से बात करें उनके पास जो भी कुछ अवेलेबल हो, जानकारी अवेलेबल हो, वो आपके साथ शेयर कर सके। रवि जी, आपको बूस्ट करने के लिए कई सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है, विक्रम सिंह जी, अवनींद्र श्रीवास्तव जी, वो बूस्टअप कर रहे हैं आपका। तो रवि जी, हमने सिर्फ ये 15 मिनट का टाइम रखा हुआ है सिर्फ इसलिए ताकि लोग चलते फिरते भी इसको सुन सकें और अपनी जानकारी बढ़ा सकें, तो हमारे पास थोड़ा सा समय है, हम ये जानना चाहेंगे अभी जब आप स्वस्थ लाइफ जी रहे हैं, कोरोना को पार कर चुके हैं, उन लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे जो इससे डरे हुए बैठे हैं।
जो लोग इनसे डरे हुए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जो जिससे आपके अभी तक घर पे आमदनी हो रही थी, जिससे आपका घर चल रहा था, है ना, आपकी रोजी रोटी चल रही थी, क्योंकि कोरोना पे आपका फोकस करने से कोरोना का कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ड्यूटी जा रहे हैं, तो मैं तो यही उनसे यही कोशिश करूंगा कि उस पर फोकस करें, क्योंकि जिस चीज पर फोकस करने से आप उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको फोकस करने से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल मैं भी अपने पिछले एक महीने से, अब लोग कहेंगे कि ये मनी माइंडेड वाला बात है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अगर पैसा नहीं होगा तो हम किसी की मदद कैसे करेंगे। अगर किसी को एक सिलेंडर भी चाहिए होगा, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उसको एक सिलेंडर कैसे देंगे। हम सिर्फ कोरोना करोगे, कोरोना 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 करने से कुछ नहीं होने वाला है, कोरोना अपने आप नहीं जाएगा, तो वो पैसा कमाना भी जरूरी है। हाँ, और उससे सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि आपका फोकस हट जाता है कोरोना से, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि डेली आपके पास ऐसी न्यूज आ रही है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं।
जी, आपका जो काम था वो आपने किया। कुछ लोग क्रिएटिव काम कर सकते हैं, कुछ पढ़िए, कुछ लिखिए, कुछ मूवी देखिए।
हाँ,
उस हालत अगर आपकी हालत काफी नाजुक है तो फिर तो हॉस्पिटल है ही, लेकिन अगर आप घर पर रहकर कुछ कर सकते हैं क्रिएटिव तो जरूर करिए।
हाँ, सेल्फ ग्रोथ के लिए जो भी करना चाहते हैं सब कर सकते हैं, सेल्फ ग्रोथ के लिए, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, दोनों चीजों के लिए सेल्फ ग्रोथ बहुत जरूरी है।
ये बहुत सही बात कही आपने कि सेल्फ ग्रोथ बहुत जरूरी है, वो फिजिकली भी जरूरी है और मेंटली भी जरूरी है, बिल्कुल सही। तो हम अपने बाकी मित्रों से भी अनुरोध करेंगे कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग इलाके के मित्रों से बात कर सकें। आपकी जानकारी में अगर कोई ऐसे बंदे हैं जो कोरोना को मात देकर वापस आए हैं, अच्छे से स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं और किसी तरह से हमारे अंदर सकारात्मकता ला सकते हैं, तो आप उनकी जानकारी यहाँ भेजिएगा, या आपके पास कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स केयर सेंटर्स की जानकारी हो तो भेजिएगा, हम उसको शेयर करते हुए चलेंगे और ये सीरीज हम आगे बढ़ाते चलेंगे, अलग अलग मित्रों से मिलते रहेंगे। रवि जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद और आपको बहुत शुभकामनाएं, एक बहुत हेल्दी, बहुत सकारात्मक, बहुत यूजफुल लाइफ जिए।
थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।
जीत गए कोरोना से, कोरोना की जंग से जीते हुए लोगों से एक सकारात्मक बातचीत। प्रस्तुति सुमेधा अग्रश्री।